ओम शांति। क्या कहा गीत ने? गीत ने कहा या हम सब ने? सचमुच बाबा बहुत अच्छा है ना? और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। उसकी आंखों के तारे हैं। बाबा ने मुरली में कहा था, लोग कहते हैं भगवान हाईएस्ट है ऊंचे से ऊंचा, और बाप कहते हैं मेरे बच्चे हाईएस्ट हैं। ये प्यार है ना उसका बहुत ज्यादा, और ये सत्य भी है। हम ही संसार की हाईएस्ट आत्माएं हैं। एक चीज पे आप सबको भी चिंतन करना है, बहुत अच्छा, अपनी जीवन को, अपनी स्थिति को महान बनाने के लिए। सबको पहले मैं बताऊं, याद दिलाऊं, बाबा हम सभी को स्मृतियां दिलाने आया है, हमारे आदि मध्यंत की स्मृतियां। और स्मृति से क्या होता है? जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्मृति आगे, और दूसरा भी है। ये मुरलियां 18 जनवरी पर बहुत चली हैं शुरू में। जैसी स्थिति जैसी स्मृति वैसी समृद्धि, दो चीजें हैं। तो बाबा हमें स्मृतियां दिलाता है। योग तो उसने सिखाया ही और संपूर्ण ज्ञान भी दिया। एक बात और कहनी है आप सबको, याद आई मुझे, कल बाबा की मुरली में था, मेरा ज्ञान इस समय ही इमर्ज होता है। कभी बाबा ने कहा, किसी ने पूछा था साकार में कि बाबा जब लक्ष्मी नारायण यहाँ थे, अगर आप तब आ जाते तो उन्हें ज्ञान तो देते? तो बाबा ने उत्तर दिया, अगर मैं आ भी जाऊं तो मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। फिर किसी ने एक और प्रश्न पूछा था, भक्ति में जब आप साक्षात्कार कराते हो तो ज्ञान भी तो देते होगे कुछ? तब भी यही उत्तर दिया था, तब ज्ञान इमर्ज नहीं होता। बड़े भारी रहस्य हैं ये सृष्टि के। बाबा ने हम सबको संपूर्ण ज्ञान दे दिया है, और साकार में ही कह आए थे, साकार मुरलियों में बहुत गहरे गहरे सीक्रेट्स, रहस्य स्पष्ट हुए हैं। क्या रहस्य था? मैं तुम्हें अपना सारा ज्ञान देकर साइलेंट हो जाता हूँ, शांत। बाबा ज्ञान नहीं दे रहे मुरलियों में। अब जो दिया है वो परफेक्ट है ना, हम उसे सुन रहे हैं रोज मुरलियों से। केवल प्यार देने आते हैं। मैं कल सोच रहा था, अगर बाबा कुछ कहना भी चाहे जैसे ज्ञान, तो हो ही नहीं रहा है, बस मिलन हो रहा है। बाबा को भी अच्छा लग रहा है बच्चों से मिलना, और बच्चों को तो अच्छा लगता ही है मिलन। एक ही थी ना बोले, इस मेले को याद रखना, सुख है इसमें बहुत। तो बाबा हमें कुछ याद दिलाते हैं। मेरे साथ साथ आप डीप फीलिंग में चलेंगे आज। स्मृति दिलाना माना याद दिलाना। जरा विचार करो, बाबा ऊपर बैठकर इस खेल को देखता रहता है। दो युग उसके लिए कैसे बीत जाते हैं, जैसे आज और कल, क्योंकि वहां सूरज चांद नहीं है, दिन नहीं है, तो वहां टाइम की अविद्या है, वो बियॉन्ड टाइम है वो इस जगह, तो वहां फटाफट टाइम बीत जाता है। बाबा सब कुछ देखता है, हर कल्प सतयुग रचता है, हम राज करते हैं, द्वापर आता है, भक्ति होती है, हम उसे याद करते हैं, वो हमारी मदद करता है, कलयुग वो आता है, ज्ञान देता है, विनाश होता है, फिर सब घर चले जाते हैं, फिर वही चक्र चलता है। ये खेल कितनी बार देख लिया होगा उसने, सोचो जरा बैठ के गहराई से विचार करेंगे। जितनी बार आपने देखा और आपने कितनी बार देखा ये आपको पता नहीं है, हम सबको पता नहीं है, अनगिनत बार। लेकिन अनगिनत कहने से कुछ मजा सा नहीं आता, मैं आपको कह रहा हूं, पहले भी हुई ये चर्चा, 10,000 बार देखा, हम भी ये खेल 10,000 बार कराए, अनगिनत में से 10,000 चुन ले, पहले 10,000, हम 10,000 बार ये खेल खेल आए हैं, याद करो जरा इसे, तो अब खेलना कैसा लगेगा? बोर हो जाएंगे? बोर इसलिए नहीं होते कि कुछ याद नहीं रहता, अगर याद रहता तो शायद बोर हो जाते हैं? हाँ, क्योंकि कुछ याद नहीं तो हर सीन नया है। तो देखो बाबा की जगह बैठे जरा हम, और नीचे का खेल हम बार बार देख रहे हैं, माया को जीतना भी बार बार हुआ है। बाबा जब साकार में थे और सेवाएं होती थी, प्रदर्शनियां होती थी, भाई 10,000 लोग देखने आए, कोर्स कितनों ने किया? 50 ने किया, तब भी करते थे 50, तो अब से 50 साल पहले भी 50 लोग कोर्स करते थे। कितने बचे? कहीं एक, कहीं दो। कई कई लोग हंसते थे, मेला लगाया, 1,25,000 खर्च हुआ, तब इतना ही होता था, एक निकला तो लोग उसे हंसते थे, 1,25,000 है कीमत तुम्हारी, सोच लो अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो बाबा साकार में भी, वो भी चला गया तो 1,25,000 भी डूब गए, होता था ऐसे, ऐसा भी होता था। तो बाबा क्या कहते थे, बच्चे तुम इस बारे में कुछ भी सोचो नहीं, देव कुल की आत्माएं अपने समय पर स्वतः ही आएंगी। तो ऐसा लगता है, ये सब अगर गहराई से देखें, न हम कुछ कर रहे हैं न करा रहे हैं, सब खेल ऑटोमेटिक चल रहा है। उसमें बाबा का आना, हमें शक्तियां देना, फिर से याद दिलाना, हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा देना। इधर भी बैठ सकते हो, आ जाओ, जो बहने नीचे न बैठे, 2 सीट खाली है। तो ये सब चलता आ रहा है, बड़ा मजा आएगा इस पे विचार करें सभी। घर कितनी बार गए होंगे हम, घर का रास्ता हमें मालूम है, जिनको रास्ता मालूम नहीं उन्हें हम रास्ता दिखाएंगे। सोचा करें, साक्षी भाव आ जाएगा, और साक्षी भाव हमारे ज्ञान योग की, स्पिरिचुअलिटी की, रूहानियत की सबसे ऊंची स्थिति है। साक्षी भाव, खेल को देखकर आनंदित हो हम सब, रजाई मिल रही है, फिर वो कैसे जाएगी? मुझे आज एक और बात याद आ रही थी बाबा की, बहुतों को तो नहीं पता है, बाबा ने कहा तुम्हारी रजाई त्रेता युग में समाप्त नहीं हो जाती, वो चलती रहती है कलयुग तक। हम में से कई हीरो एक्टर द्वापर युग में सम्राट बने होंगे। द्वापर युग में भारत के 5 ही खंड होते थे केवल, 5 स्टेट, वो भी बड़े बड़े, जैसे उज्जैन का सम्राट इधर गुजरात, महाराष्ट्र, दूर दूर तक होता था, एक साउथ का, एक उधर मगध का, एक नॉर्थ का, एक पश्चिम, लाहौर, अफगानिस्तान, दूर तक भारत था ना। तो तुम्हारी राजाई कलयुग तक भी चलती रहती है। जिनमें राजाई संस्कार भर जाते हैं वो कहीं ना कहीं राजाई प्राप्त कर ही लेते हैं ना। आज एक और गुह्य बात थी, ये मुझे अचानक याद आ रही है, आज आज की हुई ये बात। अब के तुम्हारे ज्ञान रतन क्या बन जाएंगे, हीरे जवाहरात। ऐसे नहीं बाबा ने हमें खुश करने के लिए कह दिया है, रहस्य है ये। जिसके पास जितने ज्ञान रतन उतने ही भविष्य में जन्म जन्म अथा धन। और जो इस धन को यहाँ दान करते हैं उनको उसका फल और ज्यादा मिलता है। तो हम स्मृति स्वरूप होंगे, इससे हमारी स्थिति बनती जाएगी, इससे हम समर्थ होते जाएंगे, पावरफुल बनते जाएंगे। पावरफुल बनाने के लिए बाबा ने कौन सी स्मृति दिलाई, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। और क्या दिलाया याद, तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो, तुम माया जीत हो, इस माया को तुमने बार बार जीता है। ये याद आते ही ताकत आ जाती है। और सन्यासियों ने कह दिया था माया को जीतना संभव, हमारे लिए भी असंभव, जंगल में जाके भी असंभव। तो हम सब ने सोचा था, क्या सोचा होगा, जो थोड़ी बहुत ताकत थी वो भी गई, हम भी नहीं जीत सकते। इसलिए सरेंडर करने में ही भलाई है, नहीं तो माया मारेगी बहुत। सरेंडर कर दिया, हमें स्मृति दिलाकर बाबा ने पावरफुल बना दिया है। तो जो बहुत अच्छे पुरुषार्थ यहाँ बैठे हैं, एक क्लास की मुझे याद आ रही, श्रीलंका में मैं था अभी, वो सबको तो पता नहीं है, 15 दिन श्रीलंका की तरफ होकर आया हूँ। उससे पहले 3 देशों में और, एक ओमान है मुस्लिम देश, एक कतार है मुस्लिम देश, जिसको रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड कहते हैं, छोटा सा देश, 40 लाख की आबादी, 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर, 100 लंबा 100 चौड़ा, इतना देश रिचेस्ट, सबसे अधिक धनवान। भारत वालों ने उसको उठा दिया है ऊपर, ये मुस्लिम कंट्रीज बहुत सारे भारत वालों के डेवलप किए हुए हैं सब। तो बहुत अच्छा रहा। कतार एक देश है जिसकी मैं बात कर रहा था, एक सेंटर एक भाई ने खोला हुआ, गृहस्थी है वो, इंजीनियर, पैसा उसको भी काफी मिलता है, अच्छा बड़ा मकान लेके, 80 स्टूडेंट हो गए, इसलिए मुझे कहा आप एक दिन के लिए भी आ जाओ, वीजा नहीं मिलता। तो दुबई से एक दिन का वीजा मिला और मैं गया, अच्छी सेवा हो रही है। ओमान की बात बताऊं, मुझे देखकर सतयुग याद आता था, वो भी रिच कंट्री है मुस्लिम, वो भी छोटा सा है थोड़ा लंबा चौड़ा पर आबादी कम है, हर मकान सफेद और ऐसे पत्थरों से बनाया हुआ है कि जो सुंदर रहते हैं सदा ही। ये नहीं जैसे हमारे मकान, भाई बॉम्बे में जाओ अंदर से सुंदर, बाहर से बिल्डिंग काली हो गई है, जब से बनाई थी उसके बाद किसी ने कुछ देखा नहीं उसको, धूप और बारिश होते होते बाहर से काली, जाले सीढ़ियों पे भी चढ़ो तो जाले, लिफ्ट में भी जाओ तो पान के थूक और जाले। भारत है ना, ये हमारा भारत महान। तो मां हम सब, हम कई थे, हम देखते थे कि सतयुग में 9 लाख लोग होंगे सारी दुनिया में, अगर आज की दुनिया का सारा सोना 9 लाख में बांट दिया जाए सुशील, तो महल बना देंगे सोने के, है या नहीं। अथा सोना भी है, अथा सोना संसार में, घरों में है, भारत में भी है, भारत के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ की बॉर्डर पर रोज बहुत सोना आता है, और बस 2-4 घंटे के बाद पता नहीं चलेगा वो कहाँ गुम हो गया, किसी को पता नहीं। भारत में भी इतना सोना है घर घर में, अगर उसे 9 लाख ब्राह्मणों में बांट दें, देवताओं को छोड़ो, लेंगे आप सब, तो बहुत बहुत हो जाए एक एक के पास। तो देखा फिर श्रीलंका, क्योंकि वहां 35 साल LTT का युद्ध चला, इस तरफ का एरिया जाफना साइड है भारत के नजदीक, 35 साल और 10 साल तो बहुत भयानक। तो विचार होगा सब इधर का गरीबी होगी, विकास ही नहीं हुआ, अब बहुत शांति है। 2 इंजीनियर मिले मुझे जो भारत की ओर से गए हुए वहां रेलवे लाइन बिछाने के लिए, भारत गवर्नमेंट मदद कर रही है उन्हें बहुत, तो आए प्रोग्राम में, तो मैंने पूछा, मुझे नहीं अंदाज था इस बात का, मैंने उससे पूछा यहाँ से अंती है, मुझे लगता था नहीं होगी। उसने कहा अरे भाई दोनों ने यहाँ इतनी शांति है कि भारत को ऐसी शांति लाने के लिए बहुत साल लगेंगे। मैं तो ये सुन के हैरान हो गया। सेवा का थोड़ा समाचार सुना दूं। कोलंबो रहे 3 दिन, पब्लिक प्रोग्राम हुआ एक, 3 पत्रकार आए बड़े अखबारों के वहां के पत्रकार। मैंने जो वार्ता की उसके बाद मैंने उन्हें कह दिया कि आप अब प्रोग्राम में बैठ जाओ अपने लिए, ये अखबारों के लिए तो हो गया, अपने लिए बैठ जाओ। उन्होंने मान लिया। मैंने कहा आपको अपने जीवन के लिए बहुत सुंदर बातें मिल जाएंगी। हॉल बहुत बड़ा था, इससे 1.5 गुना, 2 गुना, 2 गुना फुल था। बहुत लोग आ गए थे, VIP बहुत बैठे थे। मुझे बता दिया था कि शहर के बहुत VIP बैठे हैं। बाद में पता चला एक मिनिस्टर भी पीछे आ बैठा था चुपचाप, और उसको लोगों ने कहा आगे चलो, कहा नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऑडियंस में बैठूंगा सुनूंगा। 1 घंटा प्रोग्राम था, इंग्लिश में प्रोग्राम हुआ, 2 भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ, वहां की सिंगली और तमिल। उन 3 अखबार वालों ने मुझे अगले दिन बताया, वहां से मैं चला गया था, सारा भाषण हूबहू 3 अखबारों में छप गया फुल पेज, जो वहां के मुख्य अखबार। तो मैं तो सब जगह ये बताना नहीं भूलता कि भगवान भारत में आकर अपना दिव्य कार्य कर रहा है। मैं ये छुपाता नहीं, विदेशों में कोई बताता नहीं, वो कहते बोलना नहीं ये बात। मैं तो नहीं मानता उनके, भगवान की माने या इनकी माने, मैं गॉड शब्द यूज नहीं करता, सुप्रीम बीइंग, इंग्लिश में सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सुप्रीम फादर। और पूछ लेता हूँ सब बिलीव करते हैं, यस, सब हाथ उठाते हैं, वो हमारा पिता है, यस। तो मैं सब बता दिया उनको, सब छप गया। दूसरी जगह एक जगह हुआ, पत्रकार बुलाए, उसमें मीडिया वाले, ये प्रिंटिंग वाले भी और इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी वाले भी, 4 कैमरे लग गए मेरे सामने, 15 पत्रकार, क्वेश्चन आंसर होना था। मैंने शुरुआत ही यहाँ किससे की, भारत में भगवान माउंट आबू में आकर अपना दिव्य कार्य कर रहा है। एक बुजुर्ग बैठा था, कहाँ पर भगवान तो सब जगह है, आएगा कहाँ से। मैंने कहा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मुझे इस क्वेश्चन की इंतजार थी। मैं बताया भगवान सर्वव्यापी नहीं है, कहाँ रहता है, फिर योग, फिर बहुत सारी चीजें उसने लाइफ के लिए पूछी, संदेश दिया। मैंने पत्रकारिता की हुई है तो मुझसे पूछा तुम पत्रकारिता छोड़ के ये राजयोग के मार्ग पे क्यों चल गए। मैंने बताया, फिर कहा यहाँ के पत्रकारों के लिए एक संदेश दे दो, रिकॉर्डिंग सब हो रहा है, तो मैं अच्छी अच्छी बातें बोल रहा था। मैंने कहा हर पत्रकार को एक दूसरे का गुड फ्रेंड होना चाहिए, बेचारे एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे। मैंने कहा ये बात इन्हें सबसे अच्छी लगी, क्योंकि उन लोगों में ईर्ष्या द्वेष बहुत होती है। तो 4 बड़े सिटी में हम गए, 4ों में पब्लिक प्रोग्राम और ब्राह्मणों की भट्टी। घूमने का तो वहां कहीं होता नहीं है, बात आ गई तो आपको बता दूं, मैं सोचता था और आप भी सोचते हैं कि रावण हुआ या नहीं हुआ, लंका में इसका कुछ है या नहीं है, या ये केवल माइथोलॉजी है, यानी पौराणिक कथाएं हैं, कल्पनाएं हैं। बाबा भी कह देते हैं रावण तो 5 विकार हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन कई बाबा ने मुरली में बोल दिया था साकार में कि हो सकता है त्रेता के अंत में किसी छोटे राजा के साथ ये घटना हो गई हो। तो वहां रावण की पूरी यादगारें हैं, कैंडी एक स्थान है जो हिल स्टेशन है श्रीलंका का, सबसे सुंदर स्थान वही है, बीच में है। तो मुझे बताया कि लंका की राजधानी कैंडी हुआ करती थी, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत वालों से ही 3 जगह से लोग लिए, एक केरल से, दूसरे तमिल से, तीसरे कन्नड़ बेंगलोर आदि से, 3ों से अलग अलग काम करा के विकास कराए। अंग्रेज विकास भी बहुत कराते थे, और क्योंकि कोलंबो सागर के किनारे है तो वो पोर्ट बन सकता है, पोर्ट बना जहां जहां जाए सामान उतरे और जाए, इसलिए वहां व्यापार के लिए उन्होंने उसको राजधानी बना दिया था। लेकिन कहा इससे पहले ये कैंडी ही श्रीलंका की राजधानी हुआ करता था। तो मैं सब देखा, मैंने कहा सीता का भी कुछ यादगार है, कहा हम 5 घंटा यात्रा करके सीता मंदिर देखने गए, हालांकि हम थके हुए थे बहुत, मुझे यात्रा करना मना भी है पर मुझे सीट दे दी, मैं लेट गया, बड़ी गाड़ी थी वैन। मैंने पूछा इस जगह का क्या नाम है जो पीछे है, नदी बह रही थी बहुत सुंदर, डाउन बहुत गहरी और जंगल था, सुंदर बाग बगीचे, जंगल माना वैसा नहीं, कहा इसका नाम है अशोक वन। मुझे याद आया जिन्होंने रामायण पढ़ी है सुनी है उनको ये घटना याद आएगी कि जब युद्ध होने वाला था दोनों का, तो रावण ये दिखाने के लिए कि रावण को युद्ध की कोई चिंता नहीं है, पहाड़ी पे पिकनिक करने गया था अपने परिवार और सब फ्रेंड्स के साथ, तो राम ने बाण मारा था एक, जिससे उसके कानों के कुंडल कट के नीचे गिर गए थे। तो मंदोदरी ने सावधान किया कि देखो जो ये देख करके तुम कहां हो, तुम्हें पता नहीं राम कहां है, उसने बाण से तुम्हारे कुंडल गिरा दिए हैं, तुम्हें नहीं मारा, वो चाहता तो तुम्हें मार सकता था, उसे युद्ध करना अच्छा नहीं रहेगा, हम नष्ट हो जाएंगे, इसलिए समझौता कर लो, सीता को लौटा दो। लेकिन रावण ने नहीं माना, तो वो स्थान सब वहां है, तो मुझे और वहां रावण की मान्यता है अच्छी। एक और मंदिर में हमें ले गए जो कैंडी में नहीं था, एक दूसरे सिटी में, कहा रावण ने अपनी मां के लिए, क्योंकि वो यहां रहती थी, शिव का मंदिर बनवाया था, वो बहुत सुंदर है, हम देखने गए उसे भी। तो यादगारें हैं, भले ही ऐसा न हुआ हो जैसा वर्णन है, देखिए वर्णन में तो लोग बढ़ा देते हैं ना लेखक, रावण न हो के रमण रहा हो साजा, वहां उसकी अच्छी मान्यता, उसको बुरा नहीं मानते, और वे जानते हैं कि सीता का अगर वो अपहरण कर लाया था तो उसने अमर्यादित काम को ही नहीं किया, उसने युद्ध भी अमर्यादित नहीं किया, नहीं तो चाहता था तो उन्हें सागर पार न करने देता, बीच में मार देता, लेकिन उसने मर्यादित युद्ध किया, सीता को हाथ भी नहीं लगाया और उसको ठीक ठाक रखा, तो उसकी वहां अच्छी महिमा है। वो कहते थे भारत वाले पता नहीं क्यों रावण को बुरा मानते हैं, हमारे यहां तो तो ये सेवाएं भी बहुत अच्छी हुई। चले फिर से बाबा हमें स्मृतियां दिलाते हैं। एक बात और याद आ गई, सुना दो समाचार, कभी कभी मिलते हैं सुनाने को। दुबई में हम थे, तो दुबई में भी एक पब्लिक प्रोग्राम हुआ, वहां भी एक ऐसा सेंटर है जिसमें उन्होंने हॉल बना दिया है 125 भाई बहनों के बैठने का, कुर्सियों पर आ गए 125, उसमें कुछ मुस्लिम्स भी आ गए। बात ये बड़ी अच्छी है, इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि मेरी महिमा की है, मेरी महिमा तो आप जानते ही हो, तो सब बाबा की है, लेकिन ये सुन के वहां की बहनों और भाइयों को बहुत अच्छा लगा। हम तो इन बातों को जानते हैं, मैं हर पब्लिक प्रोग्राम में 3 बार कम से कम योग का अनुभव कराता हूं हमेशा, और पूरा ज्ञान से टर्न करता हूं हर चीज को, चाहे समस्या समाधान का टॉपिक हो, चाहे संकल्प शक्ति का टॉपिक हो, 3 टॉपिक ही रहते हैं, चाहे खुशनुमा जीवन, तीनों ही हमारे ज्ञान योग से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उनसे जोड़ देते हैं। तो प्रोग्राम हुआ, आगे आगे कुछ मुस्लिम बैठे थे, हमें दिख रहे थे वो, उनके चेहरों से और दाढ़ी से पता लग रहा था। आगे आगे एक मुस्लिम बैठा था, बुजुर्ग, चेहरे पर थोड़ी रौनक थी उसके। तो जब प्रोग्राम हो गया, मुझे तो तुरंत कतार जाना था, वहां से उठ के मैं तो प्लेन की तरफ गया एयरपोर्ट पे, तो बहनों ने मुझे बताया रास्ते में, साथ जो चल रही थी, कि उठते ही उसने बताया क्या कहा। उसने कहा कि अगर हमारे हजरत मोहम्मद साहब होते तो सूरज भाई को गले लगा लेते। मैंने कहा हमें तो भगवान ने गले लगाया हुआ है भाई। मतलब अब मुझे दूसरे मुस्लिम कंट्रीज में भी जाना, तो मेरे लिए एक अच्छा संदेश था ये कि मुसलमानों को कौन सी बातें बहुत प्रिय लगती हैं, जिनको बोला ही करेंगे, ये मैंने वहां के कुछ प्रोग्राम से जान लिया, उनके जो कमेंट्स आते थे ना रिटर्न में, तो ये अच्छी बात थी। तो बाबा हम सभी को स्मृतियां दिला रहे हैं, कुछ स्मृतियां अब हम निकाल लें जरा, 5 जो हमें रोज याद करनी है, वो याद दिला रहा है तो हमें याद करना होगा ना, जिनसे हमारा बहुत कल्याण हो, जिनसे हमारी स्थिति बहुत सुंदर हो जाए। सब निकालेंगे, उसमें से 5 चुन लेंगे सभी अपने लिए, हमें एक स्मृति आपको दिलाता हूँ याद, एक तो सबने निकाली, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। यानी बाबा ने हमें अपनी शक्तियों की याद दिलाई, तुम कमजोर नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो जो छोटी छोटी परिस्थितियों से घबरा जाओ, तुम ऐसे नहीं हो। याद दिला दूं बाबा की बात इसी हॉल में, मुझे बहुत याद रही बहुत साल तक वो, शेर अगर मच्छर से परेशान हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, हो तो जाता है, मच्छर को शेर क्या करेगा, उसको तो काट नहीं सकता ना, उसे घायल भी नहीं कर सकता, उसके पंजों में भी नहीं आएगा। लेकिन बाबा हमें याद दिलाते हैं, तुम शेर शेर नहीं हो, महावीर हो। ये परिस्थितियां, ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे संकल्प तुम्हें परेशान नहीं कर सकते, वो तुमसे परेशान हो जाएं। बहुत पावरफुल स्मृति दिलाई है। दूसरी, जिस चीज को हम सब भूले हुए हैं आजकल और जिसकी लहर अब आगे आने वाले समय में बहुत चलेगी, ये 5000 साल का खेल पूरा हुआ, अब हमें घर जाना है। बाबा की बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस, दीदी मन मोहिनी की प्रैक्टिस, लेकिन ब्रह्मा बाबा की बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस थी ये, बहुत आता था बाबा के मुख पर। इसमें हम थोड़ा सा जोड़ लें, घर जाने से पहले क्या करना है, सब कुछ यहीं छोड़कर और सब कुछ लेकर जाना है, खाली नहीं। स्मृति दिलाई बाबा ने, और कभी कभी तो बहुत पावरफुल शब्दों में कह दिया, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। क्या क्या कह दिया, तुम न भी जाना चाहो मार पीट के ले जाऊंगा, मैं महाकाल हूँ, तुमने जब मुझे बुलाया था सोचा क्यों नहीं था कि महाकाल को बुला। शिव बाबा कभी कभी फुल फोरम में बैठा होता था, ब्रह्मा जी को कह देता था तुम चुप रहना जरा, आज मुझे निमटना है इन बच्चों से, तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, तुम नहीं मानोगे, तुम्हारे शरीरों को आग लगाकर तुम्हें पावन बनाकर ले जाऊंगा। उसका काम है ना, ड्यूटी है, आज भी कहा ना ड्यूटी है मेरी, किसने ड्यूटी दी ये तो पता नहीं, बाकी उसकी ड्यूटी है, तो वो तो अपनी ड्यूटी पूरी करेगा ना। तो ये स्मृति दिलाई अब जाना है, क्या फायदा होगा इससे, वैराग्य अनासक्त वृत्ति आ जाएगी, संसार को देखते हुए भी हम इससे निकलते रहेंगे, बहुत फायदे होंगे इससे, और ये धुन लगेगी ब्राह्मणों में, इस धुन के बिना संपूर्णता आएगी नहीं। अब ये भूली हुई है, वैराग तो अब हमारा टॉपिक ही नहीं रहा ना, हम भी कभी क्लास नहीं कराते वैराग पे, क्योंकि वैराग पे सुनते ही लोगों के चेहरे सूखे पड़ जाते हैं, जो थोड़ी बहुत खुशी है वो भी खत्म हो जाती है, हमने भी छोड़ दिया, इसे छोड़ो भाई टॉपिक, समय आने पे कराएंगे। वैराग से वैराग आ गया, ठीक कहा सुशील ने, लेकिन ये वैराग की बहुत जरूरत है, स्लोगन्स में तो आता रहता है, बिना वैराग वृत्ति के संपन्नता आएगी नहीं, क्योंकि ये राग आसक्तियां हमें खींचती हैं अपनी ओर, व्यर्थ का मुख्य कारण है ये राग, इससे मुक्त हुए बिना कोई व्यर्थ से मुक्त नहीं हो सकता। अब तीसरी स्मृति आप सुनाओ, क्या याद दिलाया बाबा ने, कल्प कल्प के विजयी रतन हो, ये भी तीसरी बहुत सुंदर स्मृति है, इससे क्या फायदा हुआ, फायदा हो रहा है इससे हमें, कल्प कल्प हमने माया को जीता है, 10,000 बार जीता है ना, तो अब जीतना, माताएं रोज रोटी बेलती हैं, रोटी बेलते बेलते लाइट चली जाए, अंधेरे में बेल देंगी या नहीं, तो हमें नहीं क्या प्रैक्टिस माया को जीतने की, पता है माया के दावों भी पता है, प्रैक्टिस है हमें, अनुभव है, अगर हम ये याद रखेंगे, मैं कल्प कल्प कि विजय रतन हो तो विजय की शक्तियां जागृत रहेंगी। विजय में बहुत बड़ी शक्ति है। हमें कहानी सुनाया करते हैं छोटी सी, आपने सुनी भी हो। एक माता अंदर काम कर रही थी, दादी बुजुर्ग, उसके पोतरे की बाहर से आवाज आई। उसने देखा कि मारुति के नीचे आ गया है पोतरा, ड्राइवर भाग गया डर के, पहिया टच कर रहा है बच्चे को, छोटा बच्चा 5-6 साल का। अब वो इतना दब गया है कि निकल नहीं सकता। मां दादी ने इधर उधर देखा, कोई नहीं है, बुलाया अभी कोई नहीं। वहां क्या किया होगा उसने, उठा दे, उठा के थोड़ी पीछे कर दी, बच्चे को खींच लिया, कहां से ताकत आई उसमें। सोचने की बात है, शक्ति हम सबके अंदर है, सोई है, सोई है सबकी। जगाने के ये तरीके हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कल कल की विजयी आत्मा हो, इसलिए अपने मन में, जहां से मुझे वो सेवा समाचार याद आया था, वो बात ये थी, वहीं आ जाता हूं फिर से। श्रीलंका के सभी कुमारों की वट्टी हुई तो मैंने उन्हें कहा 10 संकल्प लिखो, 10 powerful thoughts। अभी ब्राह्मण भी ऐसे ठंडे हो गए हैं कि बेचारे से एक भी नहीं लिखना आया। मैंने कहा चलो मैं सुनाता हूं, लिखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब पांचवा तो सुनो। नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिर आखिर 10 निकाले, पावरफुल थॉट्स, जिनके पास जितने पावरफुल संकल्प हैं वो उतना ही शक्तिशाली है। तो एक उनमें से बताया जो मुझे याद आया था, जिसके कारण मैंने इस सेवा की कहानी सुनाई। हम बहुत शक्तिशाली हैं। एक बार पवित्रता के पथ पर कदम रख दिया, पीछे नहीं हटेंगे। ये शक्तिशाली संकल्प है। परिस्थितियां आती हैं जीवन में कुमारों के आगे, और देखो कुमार कहां हटते, पीछे थोड़े ही कुमार आए थे 30, कहा बहुत सारे चले गए ज्ञान छोड़ छोड़ के। उनमें से भी कईयों को जाने की इच्छा हो रही थी, कुमारों को होती है। मैंने कहा कुमार रात को बैठकर लैपटॉप खोल लेते हैं, फिर क्या देखते हैं वो तो कुमार जानते हैं। हंसने लगे, क्या आपको कैसे पता। क्या मुझे कुमार ही बताते हैं इसलिए पता है। ये लैपटॉप, ये छोटा डब्बा बड़ा खतरनाक है, इसने घर घर बिगाड़ दिया है, कुमार कुमारियों को नष्ट कर दिया है। बहुत आते हैं, क्या सुनाऊं, लोग सोचेंगे हमारी बात सुना दी, नाम लेने की तो जरूरत नहीं, नाम में पूछता भी नहीं। माता 2 कन्याओं को लेकर आई अभी अभी, देखने में बहुत अच्छी कन्याएं, दोनों के चेहरों से लग रहा था कुछ। मैंने कहा बोलो क्या है, ये डिप्रेशन में हैं दोनों। एक से मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा सवेरे उठ के 108 बार लिख सकती हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। हाँ लिख लूंगी। मैंने कहा कितने बजे उठती हो, बताओ कितने बजे उठती होगी, आप में से कोई बता दे तो इनाम मिलेगा। 11 बजे। डोली बोलो। नहीं नहीं नहीं, उसने कहा मैं सोती हूँ सवेरे 8 बजे, उठने का तो प्रश्न ही नहीं है। मैंने कहा तुमने तो नया रिकॉर्ड बना दिया, गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा तुम दोनों का। मैंने कहा क्या करती हो सारी रात, अब तो आप समझिए वही लैपटॉप, इसको कोई दूसरा नाम दे दे। टॉप तो नाम है पर टॉप नहीं है, तो डाउन ले जाने वाला। बोलो कुछ सुधार हो सकता है उनका। 2 ही कन्याएं माता की, दोनों को उसको संभालना मुश्किल है, काम कुछ नहीं करती वो, रात को लैपटॉप, दिन में सोना। वो भी नींद कैसी होती है लैपटॉप फिल्में देखने वालों की, जो रात को फिल्में देखते हैं, ध्यान दें सभी कुमार कुमारियां, क्योंकि उस टाइम मनुष्य का सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है। जो कुछ देखेंगे वो सबकॉन्शियस माइंड में छप जाएगा, उसको हटाना इम्पॉसिबल। वो चाहे हम योग कर लें, वो चाहे हमें खुशी रहे, वो चाहे दिन में जब सोते हैं तो अच्छी नींद आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगी। दिन की नींद कोई नींद नहीं होती है, स्वप्न भरी नींद कोई नींद नहीं होती है, सोने के लिए रात बनी है प्रकृति में, दिन नहीं। हाल बिगड़ता जा रहा है। अब मैंने उन्हें कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कड़वे वचन तो हैं, जैसे मुनि जी कड़वे वचन सुनाते हैं ना, अगर तुम्हें सुनने की इच्छा हो तो सुना दो। माँ ने कहा, इन्हें सुना जरूर दो। मैंने कहा, या तो तुम अपनी मौत के दिन गिन लो जल्दी जल्दी, नहीं तो थोड़े दिन में पागल हो जाओगी। वो दिख रहा था उनके चेहरे से, नींद उनको आती नहीं। सारा दिन वो मूवी, रात को मूवी, दिन में वो घूमती है सपनों में। ये है आजकल पढ़े लिखे और पैसे वालों का हाल। इसलिए युवक ध्यान दें, रात को जो मूवी देखते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड उनको ग्रहण कर लेता है, उनके इफेक्ट से बचना इम्पॉसिबल। इसलिए सबसे बड़ा श्राप बनकर आए हैं इंटरनेट। तो सभी ध्यान दें, बाबा ने हमें बहुत महान बनाने का ठेका लिया हुआ ना, हमें उसे साथ देना है। स्मृतियां दिलाई हैं, तुम बहुत महान हो, तुम पूर्वज हो, अपने कर्तव्यों को पहचानो। तुम वैसे नहीं हो जैसे संसार के और लोग हैं। हमें इन लोगों की ओर नहीं देखना, युवक क्या कर रहे हैं। जो अच्छे युवक हैं वो एक भी लाखों के बराबर है। बैठे हैं ना यहाँ डोली, तुम भी हो उनमें से एक, बैठे हैं ना कुमार, बहुत बैठे हैं। एक स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को हिलाया, भारत का नाम रोशन कर दिया संसार में, उसको लोग युग परिवर्तक कहने लगे। और भगवान की शक्तियां जिनके साथ हों, वो एक एक युवक किसको हिलाएगा? सुशील भगवान को हिलाएगा, उसका सिंहासन तो हिला ही देते हैं। इसलिए जो अच्छी आत्माएं हैं बाबा की, वो भले ही थोड़े हों, उनकी महानताएं, उनके वाइब्रेशंस, उनके प्योर तरंगे संसार को बदलने वाली हैं। इसलिए मैं महान हूँ, पूर्वज हूँ, और याद दिलाया, तुम विश्व कल्याणकारी हो। तुम्हारा एक एक संकल्प विश्व का कल्याण करता है। बड़ी बड़ी चीजें याद दिलाई, तुम इस कल्प वृक्ष की जड़ें हो, तुम आधार मूर्त हो, तुम्हारी स्थिति महान तो संसार की स्थिति महान। याद करो बाबा का सबसे गहरा महावाक्य, संसार की स्थिति का आधार तुम्हारी स्थिति है। स्मृति दिलाई, हम गरीब हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं, ये नहीं। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत महान और बहुत बुद्धिमान हो सकता है, पढ़े लिखे बुद्धि के बिना हो सकते हैं। देखे मैंने ऐसे लोग, 8 बजे सोने वाले। नहीं, अच्छे अच्छे डिग्री होल्डर, PhD किए हुए, ऐसा लगता है इनको कुछ नहीं आता। इनसे अच्छे तो गांव की माताएं, बहुत समझदार, जिनके चेहरों पे रौनक है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो कंफ्यूज जाते हैं, ये सत्य या ये सत्य। नीचे बाबा का प्रोग्राम चलता है ना, अब भी चला, कम से कम 2000 लोग ऐसे आए होंगे जिन्हें कुछ पता नहीं कहाँ आए हैं, ये पता नहीं। आज भी एक मिलने आया, मैंने ऐसे पूछ तो लेते ही, कैसा लगा कल बाबा का? बाबा, वो हैरान हो गए सुन के, बाबा कौन सा बाबा? मैंने कहा, ज्ञान नहीं लिया कि नहीं? हमें तो दीदी ने कहा था तुम्हें चलना है, हम आ गए। मैंने कहा, तुम्हारी दीदी भी महान और तुम भी महान। कई आ गए होंगे, कई, हमने तो 3 दिन कोर्स किया, हमारी दीदी ने कहा। हाँ, और कहा कि हम तो 3 दिन कोर्स किया भाई, हम तो आगे, मेरे से समस्या लेकर आया था। मैंने कहा, योग करना 21 दिन, कह योग क्या होता है बाबा, सिखा दो भाई मुझे। मैंने कहा सीखा नहीं है कि नहीं, मैं तो 3 दिन गया था बस। तो भीड़ ऐसी हो जाती है ना, इसलिए भगवान को भी आते हुए थोड़ा सा समझ गए ना, बाबा अपवित्र सभा में नहीं आना चाहता, उसको तो पवित्र फूल चाहिए, सुगंधित फूल, जिनकी सुगंध, जिनकी रौनक, जिनके वाइब्रेशंस। अब वो क्या प्यार करेंगे भगवान को, वो सोच रहे होंगे दादिया बैठी है भाई, अब नई क्लास चलेगी हमारी, बहुत देर तक देख ही रही है सबको, पता नहीं क्या कर रही है दादी, सोचते हैं ना लोग ऐसे। कम से कम 2000 आए थे। तो बाबा ने हम सभी को महान बनाया। ये बात मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं, थोड़ी अच्छी आत्माएं ही काफी हैं विश्व को बदलने के लिए। इसलिए जो बाबा के बुद्धिमान समझदार बच्चे हैं वो इन स्मृतियों में आ जाएं, स्वरूप बने इनका, याद करें हम बहुत महान हैं, हमारा कर्तव्य भी महान, हमारी जिम्मेदारियां भी महान, हमारा एक एक संकल्प जग का कल्याण करने वाला है, हमारे श्रेष्ठ कर्म संसार के लिए नई प्रेरणाएं होंगे। याद करो बाबा ने कहा, योग युक्त कर्म तुम्हारे दो युग के लिए विधान बन जाते हैं। दो युग क्या, चारों युग, द्वापर युग से वही विधान चलेंगे, थोड़ा थोड़ा जुड़ता जाएगा समय अनुसार। तो हमारे योग युक्त कर्म इतने महत्व के हैं, इसलिए सभी अपने महत्व को जानते हुए और जरा याद किया करेंगे। ये खेल हमने अनगिनत बार 10,000 बार देखा है, माया को जीता है, भगवान से सुख लिया है, वरदान पाए हैं, उसके साथ घर गए हैं, फिर स्वर्ग पर राज किया है। विचार करना, चिंतन से आनंद आएगा, ये स्वदर्शन चक्र हो जाएगा और ये हमें निसंकल्प करेगा, हमारे संकल्पों को महान बनाएगा। तो सभी अभी जनवरी मास में अच्छा पुरस्कार करेंगे, सब अच्छा करेंगे। जो भी यहाँ बहुत दिन रहे मधुबन में, जितने दिन भी रहे, बहुत अच्छा पुरस्कार करना सभी। ये सुंदर भूमि, संसार का सबसे महान तीर्थ, जहाँ के वाइब्रेशन संसार में सबसे पावरफुल हैं, वहाँ हम सब हैं, इसका पूरा फायदा उठाना। ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।